मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगला अध्याय है यजमानी व्यवस्था। इसकी भूमिका निम्न प्रकार है। यजमानी व्यवस्था अंतरजातीय संबंधों पर आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य भारत में उस परंपरागत सामाजिक जीवन तथा दर्शन को अस्थायित्व प्रदान करना है, जिसमें धर्म, सामूहिकता, अनुवांशिक व्यवसाय और जाति संस्करण को आवश्यक समझा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के व्यवसाय और पारस्परिक कर्तव्य परंपरा के द्वारा ही निर्धारित होते हैं तथा किसी भी जाति समूह को अपने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक समझा गया होगा कि एक ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जाए जिसकी सहायता से भिन्न भिन्न व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाली जातियों को भी कार्यात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोगी बनाया जा सके। दूसरा तथ्य यह है कि भारतीय ग्रामों की अर्थव्यवस्था सदैव से ही पिछड़ी रही है। जीवन की परंपरागत प्रणाली के कारण यहाँ न तो मुद्रा का अधिक प्रचलन रहा है और न ही ग्रामीणों के पास इतने साधन थे कि मुद्रा के द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके फलस्वरूप बहुत आरंभिक काल से ही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रचलन रहा है। धीरे धीरे वस्तु विनिमय के साथ ही ग्रामों में सेवाओं का विनिमय होना भी आरंभ हो गया। इसका तात्पर्य है कि धोबी ने कुम्हार, बढ़ई नाई, माली तथा धानुक आदि के कपड़े धो दिए, जबकि इन लोगों ने उसे अपने द्वारा की जाने वाली सेवाएं प्रदान कर दी। इसी प्रकार पुरोहित, लोहार, धोबी, तेली, नाई तथा अन्य छोटी जातियों के व्यक्तियों ने किसान को अपनी सेवाएं प्रदान की, जबकि किसान ने फसल कटते ही उनकी सेवाओं के आधार पर उन्हें एक निश्चित मात्रा में अन्न दे दिया। इस प्रकार बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामों में सेवा के विनिमय के आधार पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी थी। धीरे धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि सेवाओं के विनिमय द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना एक उपयोगी परंपरा बन सकती है, क्योंकि इसका लाभ धनी और निर्धन सभी व्यक्तियों के लिए है। इसके फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में भी सेवाओं का विनिमय आरंभ हो गया। भारत में स्मृति काल से ही धर्म के अंदर तरह तरह के कर्मकांडों का समावेश होने लगा था। यह धार्मिक कर्मकांड इतने जटिल थे कि इन्हें पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती थी। इन सेवाओं में भी कुछ सेवाएं दूसरी सेवाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती थी, इसलिए विभिन्न सेवाओं के बदले में मिलने वाली पुरस्कार की मात्रा भी भिन्न भिन्न निर्धारित कर दी गई। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान तथा उनके कार्यात्मक महत्व को सभी जातियों ने स्वीकार कर लिया। इसी व्यवस्था को संक्षेप में हम यजमानी व्यवस्था कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में यजमानी व्यवस्था अथवा यजमानी प्रथा को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में इसे बाड़ा बलूटे, चेन्नई में मिरासी और मैसूर में अद्दे कहा जाता है। आस्कर लेविस का कथन है, यजमानी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाओं की आशा की जाती है। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं की अंतर संबंधता को स्पष्ट करती है। यजमानी व्यवस्था की प्रकृति को समझने से पूर्व सर्वप्रथम यजमान के अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है। मूल रूप से यजमान शब्द संस्कृत के शब्द यजमान से लिया गया है। इसका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर धार्मिक कार्य पूर्ण करवाता था। इस दृष्टिकोण से यजमान एक प्रकार का संरक्षक समझा जाता था। ग्रामीण जीवन में यजमानी व्यवस्था को से संबंधित यह अर्थ न केवल परंपरागत बल्कि बहुत सीमित भी है। इस शब्द की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए बाइजर का कथन है कि यजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तिकर्ता का संबंध रखते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का एक समय में किसी का यजमान हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही किसी अन्य अवसर पर उसका भी कोई यजमान हो सकता है। उदाहरण के लिए एक मालिक किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ धार्मिक सेवा के लिए नियुक्त करता है तो मालिक को नियुक्तिकर्ता होने के कारण यजमान कहा जाएगा, जबकि ब्राह्मण को सेवा करने वाला इसके साथ ही माली भी कुछ व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में वही माली सेवा करने वाला है, जबकि सेवा लेने वाला व्यक्ति उसका यजमान होगा। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष अवसरों पर परंपरागत सेवा लेने वाले व्यक्ति को यजमान कहा जाता है, जबकि सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को काम करने वाला, कमीन, परजन, प्रजा अथवा पौनी इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि ये सभी शब्द साधारणतया निम्न जातियों के सेवा देने वाले व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि ब्राह्मण को पंडित, पुरोहित तथा वंशावली पढ़ाने वाले को ब्राह्मण को भाट कहने का प्रचलन आज भी बना हुआ है। नियुक्तिकर्ता द्वारा सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार को इस व्यवस्था के अंतर्गत यजमानी हक कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक बार जिस व्यक्ति को किसी जाति समूह अथवा परिवार में सेवा करने का अवसर मिल जाता है, वह बाद में यजमानी हक के रूप में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में यजमानी हक रखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति उस परिवार में वही सेवा नहीं प्रदान कर सकता। आज भारत में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही यजमानी व्यवस्था का यह रूप विद्यमान नहीं है, बल्कि छोटे नगरों तथा विभिन्न धार्मिक केंद्रों में भी यजमानी व्यवस्था का एक बहुत ही अस्पष्ट रूप देखने को मिलता है। भारत में यजमानी व्यवस्था की व्यापकता तथा इसकी विशेषताओं को देखते हुए डॉक्टर वाइजर ने लिखा है कि उत्तर भारत के सभी गाँवों की विभिन्न जातियाँ सेवा संबंधों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक जाति दूसरे जातियों को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। यदि एक समय में कोई व्यक्ति नियुक्ति करता है तो दूसरे समय पर वही व्यक्ति सेवा करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति के पास भी विभिन्न जातियों के अनेक यजमान अथवा मुवक्किल होते हैं। इस प्रकार हिंदू समुदाय में सेवा की अंतर संबंधता की इसी व्यवस्था को हम यजमानी व्यवस्था कहते हैं। वास्तविकता यह है कि यजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में अधिक स्पष्ट और अधिक प्रभावपूर्ण है, लेकिन इसके बाद भी यह देश के अन्य भागों में भी विद्यमान है। भारत में यजमानी व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण संस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके संगठन, कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण जीवन में इसके महत्व को स्पष्ट किया जाए। हेडिंग है यजमानी व्यवस्था की संरचना तथा कार्यप्रणाली। यजमानी व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का एक व्यावसायिक रूप है, जिनके द्वारा प्रत्येक जाति से एक विशेष व्यवसाय करने तथा उसके द्वारा अन्य जातियों की सेवा करने की आशा की जाती है। यह व्यवस्था प्रत्येक जाति को एक दूसरे से भिन्न व्यावसायिक अधिकार और कर्तव्य सौंपती है, जिनमें साधारणतया इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। निम्नांकित आधारों पर इस व्यवस्था की संरचना तथा कार्यप्रणाली को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है व्यावसायिक रूप। यजमानी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक व्यावसायिक स्वरूप है, जिसके द्वारा प्रत्येक जाति को एक विशेष व्यवसाय करने का अधिकार दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह आवश्यक होने पर अपने यजमान की सभी प्रकार से सेवा करेगा तथा उसके पुरस्कार के रूप में कुछ वस्तुएं अथवा मुद्रा प्राप्त करेगा। इसके पश्चात भी इस व्यवस्था के अंतर्गत कमीन और यजमान के बीच सेवा के पुरस्कार की कोई निश्चित राशि नहीं होती, बल्कि इसका निर्धारण यजमान की इच्छा पर निर्भर होता है। साधारणतया पारितोषिक की मात्रा यजमान की आर्थिक स्थिति और अवसर के महत्व के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए यजमान के यहाँ कथा के अवसर पर एक माली अथवा पंडित की सेवाओं के लिए उतना पारितोषित नहीं दिया जाता जितना कि विवाह के अवसर पर। इसके पश्चात भी यजमान का यह नैतिक उत्तरदायित्व तो होता है कि वह सेवा करने वाली जाति को उतना पुरस्कार देता है जितनी उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सके। यजमानी व्यवस्था के यह व्यावसायिक स्वरूप समूहवादी होने के कारण ही बाध्यता मूलक भी है। इसका तात्पर्य है कि कोई यजमान सेवा देने वाले व्यक्ति को काम से तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि काम करने वाला व्यक्ति भी इसके लिए तैयार न हो। इसी प्रकार कोई कमीन अपने यजमान की सेवा तब तक बंद नहीं कर सकता जब तक कि वह उस सेवा के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य कमीन की नियुक्ति न करा दे। यदि यजमान बिना किसी कारण के कमीन को काम से पृथक करता है तो सेवा से संबंध में कोई भी दूसरा व्यक्ति वही सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि काम करने वाली जातियों के संगठन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। डॉक्टर दुबे का कथन है कि काम करने वाली जातियां भी एक विकसित व्यापारिक संघों का निर्माण करती है। जाति पंचायत द्वारा दंड मिलने के भय से कोई भी व्यक्ति दूसरे के स्थान पर काम करना नहीं चाहता। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उस गाँव में उसी जाति के सदस्य वहाँ उसका रहना भी कठिन कर देते हैं। यही कारण है कि यजमान पूर्णतया निरंकुश नहीं हो पाता, बल्कि वह सेवा के अवसर के महत्व को देखते हुए काम करने वाले जाति को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता है। यदि काम करने वाली जाति का कोई सदस्य किसी अन्य गांव में जाकर बस जाता है तो भी यजमान से उसके संबंध समाप्त हो जाना सदैव आवश्यक नहीं होता। दूसरी हेडिंग है पैतृकता का आधार। यजमानी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की व्यवसायिक स्थिति उसके जन्म पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि काम करने वाली जातियों को यजमानी हक उत्तराधिकार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्राप्त होता रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक गांव में कोई धोबी 10 किसानों के कपड़े धोता है तो उतने परिवार के कपड़े धोना उसका जजमानी हक बन जाता है। यह हक पैतृक संपत्ति के रूप में पिता से उसके पुत्र अथवा पौत्रों को प्राप्त होता रहता है। ऑस्कर लेविस ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को अनेक परिवारों पर मिलने वाला जजमानी अधिकार एक संपत्ति के समान है जो पिता से उसके पुत्र को हस्तांतरित हो जाता है। यही कारण है कि न तो एक जजमान बिना किसी कारण के काम करने वाली जाति को अपनी सेवा से वंचित कर सकता है और न ही कोई अन्य व्यक्ति पुराने कमीन की अनुमति के बिना उसके जजमान की यहाँ सेवा कर सकता है। इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि कभी कभी काम करने वाली जातियाँ अपने जजमान से संबंध सेवा की संपत्ति के समान या अन्य व्यक्तियों को अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से बेच भी देती हैं। ऐसा होने पर किसी अन्य व्यक्ति को जजमानी हक उसी तरह प्राप्त हो जाता है जैसे मुद्रा द्वारा कोई वस्तु खरीद कर उस पर अधिकार स्थापित किया जा सकता है। उत्तर भारत में लोहार जाति का अध्ययन करने डॉक्टर रेड्डी ने लिखा है कि जजमानी हक का अधिकार अन्य प्रकार की संपत्ति के समान ही माना जाता है। यह पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है और जब कुछ भाई पृथक होते हैं तो जजमानों का भी उनमें समान रूप से विभाजन हो जाता है। जिस प्रकार परिवार में केवल एक ही पुत्री होती है उसमें उसी के पति को अपने ससुर के जजमानी अधिकार प्राप्त होते। तीसरा, सेवाओं के अंतर संबद्धता हेडिंग है। जजमानी व्यवस्था के द्वारा एक गांव अथवा समूहों की सभी जातियां एक दूसरे की जजमान होती हैं अथवा विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार सभी जाति समूहों के बीच सेवाओं के आधार पर एक स्पष्ट अंतर संबद्धता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए पुरोहित अपने जजमानों के यहाँ विभिन्न संस्कारों को पूरा करता है। बढ़ई उसके हलों की मरम्मत करता है, माली फूलों आदि की व्यवस्था करता है, धोबी कपड़े धोता है, मेहतर सफाई करता है, तेली धानुक इत्यादि अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एक समय में धोबी नाई के कपड़े धोता है तो धोबी काम करने वाला हुआ और नाई उसका जजमान, लेकिन दूसरे समय में वही नाई जब धोबी की सेवा करता है तो धोबी जजमान बन जाता है जबकि नाई काम करने वाला होता है। सेवाओं की यह अंतर संबंधता इसलिए स्थायी बनी रहती है क्योंकि सभी जातियों को एक दूसरे की सेवाओं की आवश्यकता होती है। वास्तविकता तो यह है कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति समूह जजमान भी होता है और कमीन भी। इसके पश्चात भी साधारणतया यह ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस जजमान का कमीन है वही व्यक्ति दूसरे अवसर पर उसी का जजमान न बन जाए। उदाहरण के लिए यदि एक धोबी जाति में ख काम करने वाला है और नाइयों में ग उसका जजमान है तो साधारणतया ग किसी और अवसर पर ख को अपनी सेवाएं नहीं देता बल्कि वह सेवा नाई जात के किसी दूसरे सदस्य द्वारा दिए जाने की प्राथमिकता दी जाती है। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत यह कोई निश्चित नियम नहीं है लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाता है। चौथी हेडिंग है जजमानी पारितोषिक तथा अधिकार। जजमानी व्यवस्था की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता यह है कि काम करने वाले व्यक्ति को जजमानी द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार अथवा मेहमान मेहनताना पूर्व निर्धारित नहीं होता बल्कि यह जजमान की इच्छा पर निर्भर होता है। इस दृष्टिकोण से जजमान के रूप में व्यक्ति के अधिकार काम करने वाले की अपेक्षा अधिक होते हैं, लेकिन इससे पश्चात भी जजमान के अधिकार पूर्णतया अनियंत्रित और एकाधिकारवादी नहीं होते क्योंकि जजमानी हक कम कर देने से उन्हें फिर एक विशेष सेवा से वंचित रह जाने का भय बना रहता है। जजमानों द्वारा कमीनों और पुरोहितों को तो पारितोषित दिया जाता है, वह साधारणतः तीन रूपों में देखने को मिलता है। क, पारितोषिक अथवा मेहनताना देने का पहला तरीका यह है कि जजमान द्वारा कमीन को सेवाओं का नगद भुगतान न किया जाए बल्कि दोनों एक दूसरे को अपनी सेवाएं देते रहें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का जजमान और कमीन बन जाए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गांव में सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान को अधिक महत्व दिए जाने के कारण पारितोषिक भुगतान के यह स्वरूप बहुत कम तथा कुछ निम्न जातियों में ही विद्यमान है। ख, काम करने वाली जातियों को पुरस्कार मिलने का दूसरा तरीका यह है कि वे जजमान से विभिन्न अवसरों जैसे जन्म, विद्यारंभ, विवाह, मृत्यु, होली, दीपावली, दशहरा इत्यादि पर पुरस्कार प्राप्त करते रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें मासिक, त्रैमासिक अथवा फसल कटने के समय भी जजमान से कुछ पारितोषिक प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। साधारणतया काम करने वाली जातियाँ विभिन्न अवसरों से संबंधित अपनी अधिकतम सेवाएं प्रदान करती हैं और जजमान अपने साधनों के अनुसार ब्राह्मण, माली, बढ़ई, नाई, मनिहार, दर्जी, कुम्हार, तेली, धोबी तथा लोहार को प्रथागत रूप से पारितोषिक प्रदान करता है। ग, जजमानी पारितोषिक का तीसरा स्वरूप कुछ विशेष प्रकार की सुविधाओं के रूप में भी देखने को मिलता है। ये सुविधाएं साधारणतया तब दी जाती हैं जब किसी काम करने वाली जाति को दूसरे गांव से बुलाकर अपने गांव में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में जजमान अपने कमीन अथवा काम करने वाले लोगों को रहने के लिए स्थान, परिवार के लिए भोजन, उनके जानवरों के लिए चारा, बिना ब्याज का ऋण, पुराने कपड़े तथा नियमित रूप से आय प्राप्त करने के लिए खेतों में कुछ काम देने की व्यवस्था करता है। जब जजमानों की संख्या बढ़ जाती है तब इन विशेष सुविधाओं को देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके पश्चात भी किसी दूसरे गांव से आकर बसने वाले कमीनों को साधारणतः उसी गांव की काम करने वाली जातियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। पांचवी हेडिंग है जजमानी अधिकारों का अस्थायित्व। भारतीय गांव में जजमानी व्यवस्था से संबंध पारितोषिक और अधिकारों में अत्यधिक अस्थायित्व पाया जाता है। डॉक्टर वाइजर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि इस अस्थायित्व का कारण गांव के प्रथागत विश्वास, गांव में बड़े बूढ़ों की प्रधानता, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ तथा राजकीय कानून आदि हैं। वास्तविकता यह है कि जजमान द्वारा काम करने वाली जातियों से संबंधों को अनेक पीढ़ियों तक बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। यदि कोई काम करने वाली जाति निर्धारित सेवा देने से इनकार करती है तो गाँव के वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति अथवा स्थानीय संगठनों के द्वारा उन्हें अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी ओर यदि कोई जजमान काम करने वाली जाति का शोषण करता है अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार के पारितोषिकों से वंचित करता है तो उस पर गांव का अपेक्षाकृत कम नियंत्रण रहता है। इसका कारण यह है कि एक ओर जातिगत नियमों के अनुसार जजमान की स्थिति कमीन से ऊंची होती है और दूसरे कमीन भी स्वयं अपने जजमान को व्यर्थ में खोना नहीं चाहता। इसके फलस्वरूप जजमान को अक्सर काम करने वाली जातियों का शोषण करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन इसके पश्चात भी गाँव में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन कम नहीं हो सका। हमारे धार्मिक नियम सभी व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि सभी जातियों के व्यक्तियों के लिए उनके व्यवसाय सुनिश्चित हैं और प्रत्येक व्यक्ति को न करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय को न करने वाला पाप का भागी होगा। इसका पूर्व कल्पित धारणा में सभी का अटूट विश्वास होता है। इसी के कारण जजमानी व्यवस्था को इतना अस्थायित्व मिला हुआ है। जजमानी व्यवस्था की उपयुक्त संरचना तथा कार्यप्रणाली से स्पष्ट होता है कि भारत में जजमानी व्यवस्था यहाँ के जातिगत संस्करण को अस्थायी बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जातियों के बीच कार्यात्मक निर्भरता बनाए रखने तथा विभिन्न जातियों के एक दूसरे के समीप लाना है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मुद्रा विनिमय के अभाव की पूर्ति करना रहा है। वास्तव में जजमानी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था का एक उपसंकुल है जिसका उद्देश्य धन के संग्रह को हतोत्साहित करके पारस्परिक सेवा के महत्व को स्पष्ट करना है। इस आधार पर जजमानी व्यवस्था की संरचना तथा प्रकृति को संक्षेप में निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था से संबंध है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सभी जातियों के लिए एक विशेष व्यवसाय सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसी व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य करना है। जजमानी व्यवस्था की प्रकृति अनुवांशिक है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वंश परंपरा के द्वारा एक विशेष सेवा देने का अधिकार प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो जाने के बाद भी जजमानों और काम करने वाली जातियों के बीच संबंध समाप्त नहीं होते। तीसरा, जजमानी अधिकार एक संपत्ति के समान है। इसका तात्पर्य है कि कमीन के लिए जजमान एक संपत्ति है और वह अपने जजमान से एक अधिकार के रूप में विभिन्न प्रकार के पारितोषिक उपहार प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसके जजमान उसके विभिन्न पुत्रों में उसी प्रकार विभाजित हो जाते हैं जिस प्रकार प्रत्येक संपत्ति का विभाजन विभिन्न पुत्रों में होता है। यही कारण है कि किसी कमीन को अपने अधिकारों से वंचित करना एक जजमान के लिए कठिन कार्य समझा जाता है। न्यायालय द्वारा भी अनेक ऐसे निर्णय दिए गए हैं कि यदि कोई जजमान अपने कमीन से उसके परंपरागत सेवा न ले तो उसे कमीन को जजमानी हक आवश्यक देना पड़ेगा। चौथा, जजमानी व्यवस्था परंपरागत अर्थव्यवस्था का एक विशेष स्वरूप है। जजमानी व्यवस्था में खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, मुद्रा के प्रचलन और भावताओं के निर्धारण की विशेषता नहीं पाए जाते। इसके अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पारितोषिक का स्वरूप व्यक्ति की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। पांचवा, जजमानी व्यवस्था मुद्रा पर आधारित नहीं है। इसके अंतर्गत सेवाओं का भुगतान सेवा, अन्न तथा वस्तुओं के रूप में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था वस्तु विनिमय में भी पूर्णतया भिन्न है। छठवां, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का एक सुनिश्चित स्वरूप विद्यमान है। जजमान और काम करने वाले जातियों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के संदर्भ में सुनिश्चित हैं तथा कोई भी पक्ष साधारणतः अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता। सातवां, प्राथमिक संबंध जजमानी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। सभी जजमानों तथा काम करने वाले लोगों के बीच संबंध अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होते हैं। इन संबंधों में पारस्परिक हितों की पूर्ति की भावना प्रबल होती है तथा अक्सर जजमान से संबंध विभिन्न काम करने वाली जातियों के बीच एक प्रबल सामुदायिकता की भावना विकसित हो जाती है। इसी विशेषता ने ग्रामीण सामाजिक जीवन में प्राथमिक समूहों के निर्माण की प्रक्रिया को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है।